अब बात ये है कि कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं। दुनिया के 550 करोड़ या 600 करोड़ लोग, उसमें एक आदमी भी ऐसा समझदार नहीं मिलेगा जो बोल देवे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, अथवा ये काम मैं दुखी होने के लिए करता हूं। अगर ऐसा बोलता है तो झूठ बोलता है। सभी लोग सुखी होने के लिए कोशिश करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, युग से लेकर युगांतर तक, दुखों को भगाना और सुख को थामे रखना। जीव मात्र, कीड़ी मकोड़ा, घोड़ा, गधा, बिला, जो भी जीव है, छोटे छोटे दिमक भी दुख से हटते और सुख में को थामते। सभी की ये प्रवृत्ति है, लेकिन ये प्रवृत्ति करते करते आखिर रहते कि देखते तो मरते समय दुख ही पल्ले रहता है। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, सब छोड़ के जाना पड़ता है तो दुख ही हाथ लगता है। सुख तो कभी कभी थोड़ा दिखता है, लेकिन दुख ही दुख, क्योंकि सुख दिखता है धोखे वाला सुख है। सुख एक बार सच्चा दिख जाए तो फिर कभी दुख होता ही नहीं। ये तो दुख के रूपांतर को सुख मानते हैं। सिर पर बोझा है, थक गए, दुखी है, कंधे पे रखा, हाश सुख हुआ, कंधा थका एक तो दूसरे कंधे पे रखा, बोले हाश आराम हुआ। फिर गठरी भेजी लकड़ी की, पैसे मिल गए, बोले हाश सुख हुआ। क्या सुख हुआ? सीधा खरीदा, बनाया, खाया, पेट पे हाथ घुमाया, हाश आराम हुआ। कुछ नहीं, लोटा लेके खाली करने जाएगा सुबह, बोलेगा आराम हुआ। फिर लकड़ी का बोझा ढोएगा, ये आराम आराम। असली आराम आत्मा का एक बार मिले तो फिर कभी दुख तुम्हारे को छू नहीं सकता। वृंदावन में कबीर जी ने देखा कि एक व्यक्ति ऊंची आत्मा है। कबीर जी ने गौर से उसको देखा, वो भी कबीर जी को देखने लगा। मानो कबीर जी को देखने वाला धर्मदास है। वो माधोगढ़ का निवासी था, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने जा रहा था। कबीर के दर्शन होते ही वो ठगा सा रह गया। कबीर ने कहा कैसे? बोले यहां भगवान का दर्शन करने आया हूं, हर साल आता हूं। पागल हुए हो? भगवान का दर्शन और हर साल करना पड़े? भगवान का दर्शन तो एक बार हो जाए तो बस, फिर अदर्शन होता ही नहीं है। ये कैसे भगवान के दर्शन करते हो कि हर साल करना पड़े? ये कैसा भगवान है? बोले बांके बिहारी, अरे तो भगवान की मूर्ति के दर्शन कर। भगवान का एक बार दर्शन करो तो फिर जैसे घड़े का आकाश महाकाश को एक बार जान ले, फिर महाकाश के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। तरंग अपने को पानी जान ले, फिर मैं पानी हूँ रटने की भी जरूरत नहीं है, और समुद्र के पास जाने की भी जरूरत नहीं, स्वयं ही है। तो तुम पागल हुए हो? हर साल दर्शन करने आते हो भगवान का या तीर्थ का? तो तुमने तीर्थ का भी दर्शन नहीं किया, भगवान का भी दर्शन नहीं किया। तीर्थ तीन प्रकार के होते, जैसे हरिद्वार है, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी, पुष्कर, ये स्थावर तीर्थ है। वृंदावन ये स्थावर तीर्थ है। ठीक है, जो पहले पहले हैं संसार में वो स्थावर तीर्थ में जाते हैं तो अच्छा है, माहौल मिलता है, सत्संग मिलता है, जानना चाहिए। लेकिन स्थावर तीर्थ में डुबकी लगा के भटकते रहे होटलों में तो कोई फायदा नहीं रहता। समोसे खाते रहे और मालपुए चबाते रहे तो कुछ भी फायदा नहीं मिलता आध्यात्मिक। स्थावर तीर्थ से दूसरे उत्तम तीर्थ होते जंगम, जिन्होंने भगवान के प्रसाद को पाया है। तो कबीर जी ऐसे जंगम तीर्थ थे, चलते फिरते तीर्थ, महापुरुष होते हैं। स्थावर तीर्थ तो अपने स्थान पे ही होता है। और उसको फिर साफ कराओ, पुष्कर तालाब को सफा कराओ, फलाना तीर्थ साफ कराओ। लेकिन वो महापुरुष रूपी तीर्थ तो सभी को साफ करते रहते हैं और स्वयं निर्मल बने रहते हैं। तीसरा उससे भी सात्विक तीर्थ होता है, सत्य बोलना तीर्थ है, क्षमा तीर्थ, उदारता तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, भगवत विश्रांति तीर्थ, ये दैविक सत्व गुण ये भी तीर्थ है। तो स्थावर तीर्थ, चलते फिरते संत जंगम तीर्थ और सद्गुण, आत्म शांति, आत्मज्ञान, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, क्षमा, शौच, ये सद्गुण के तीर्थ होते हैं। तो अब दो तीर्थों में वो पहुंच गया, स्थावर तीर्थ वृंदावन बांके बिहारी की एरिया थी और फिर जंगम तीर्थ कबीर मिल गए, तो दो तीर्थ, अभी सत्संग नहीं मिला तीसरा तीर्थ, दो तीर्थ मिले। तो रीवा जिले का धर्मदास देखता ही रह गया, कबीर जी चलते बने। मैं काशी का हूं, कबीर मेरा नाम है, कभी आ जाना। सोचा कि कभी क्या, अभी इनके पीछे लग जाऊं, लेकिन इनके पीछे लगूंगा तो फिर लौट नहीं पाऊंगा। ये ऐसे जंगम तीर्थ है कि इनके रंग में रंग जाऊंगा तो पीछे इतनी जिम्मेदारियां हैं, मकान है, ये है, दुकान है, नौकर चाकर, इतना स्वभाव विभाव स्वभाव, कैसे भी अपने को रोका। बांके बिहार के मंदिर में जाना अब मन नहीं करता, रीवा जिले में पहुंच गए अपने घर। अब ठाकुर जी की पूजा करते तो देखते ये तो मनुष्य का बनाया हुआ ठाकुर जी है, अंतर्यामी ठाकुर जी के बिना ये बाहर के ठाकुर जी की पूजा भी तो नहीं होगी। और बाहर के ठाकुर जी की पूजा करके शांत होना है अंतरात्मा के ठाकुर में। ये मंदिर बड़ा है, ये भगवान बड़ा है, ये प्राचीन, ये तो उनका अपना अपना धंधा है, करते रहते, लेकिन मुझे तो एक बार भगवान का दर्शन हो जाए बस। एक बार भगवान का दर्शन होने से फिर अदर्शन नहीं होता है, एक बार भगवान मिल जाए तो फिर दुख नहीं टिकता। जीवन भर सब करते रहो, दुख भगाते रहो, सुख को पकड़ते रहो, सुख टिकता नहीं, दुख भगता नहीं, लेकिन एक बार ठीक से भगवत दर्शन हो जाए तो सुख मिटता नहीं और दुख टिकता नहीं, आता नहीं। मुझे निर्दुख नारायण का दर्शन करना है और वो सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं होगा। कब आएंगे दिन मैं सद्गुरु कबीर जी के पास पहुंचूंगा। स्थावर तीर्थों में तो बहुत भटका, जंगम तीर्थ के चरणों में बैठकर, सात्विक तीर्थों का सत्संग सुनकर, सारे तीर्थों में तीर्थत्व जिसका है उस परम तीर्थ आत्मा में विश्रांति पाऊंगा। भगवान शिव के वचन सत्संग के याद आए, शिव जी पार्वती को कहते हैं, तामसी प्रकृति चटोरे लोग जिनको भगवान की इच्छा नहीं, ऐसे लोग तामसी प्रकृति के, ये तीर्थ है, उधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है, बाहर भटक भटक के जिंदगी पूरी कर लेते हैं। आत्म तीर्थ में नहीं आते तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, दुखों से छुटकारा कैसे होगा, शोक से छुटकारा, भय से छुटकारा, द्वेष से छुटकारा, राग से छुटकारा, जीवन मुक्ति का सुख और जन्म मरण के दुखों से पार, तो वही होता है जिसको सच्चा सत्संग मिलता है। तो हे पार्वती, इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसी प्रिये। जो आत्मतीर्थ नहीं जानते सद्गुरु की कृपा से, उनको मुक्ति कहाँ होगी। आत्मतीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षसी प्रिये, जो आत्मतीर्थ को नहीं जानते उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये आत्मतीर्थ दूर नहीं है, आत्मतीर्थ दुर्लभ नहीं है, आत्मतीर्थ के बिना जीवन जीवन नहीं है। जो भी कुछ हस्ती दिखती है बाहर में के तीर्थों में आने की जो ताकत है वो भी आत्म तीर्थ की सत्ता से आते हैं, और जंगम तीर्थों को सुनने की जो अकल है वो भी आत्म तीर्थ से मिलती है। इसीलिए आत्म तीर्थ में आना ही चाहिए और मुझे कबीर जी के पास जाना है। ऐसे करते करते 6 महीने के बाद रीवा जिले का मध्य प्रदेश का धर्मदास पहुंच गया काशी, और हर्षित मन से कबीर ने कहा कि हर्षित मन कीना बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना, मन अपने तब कीना बिचारा इन कर जान महाटंक सारा। ये तो कबीर जी महाटंक सार है, सत्य की अशर्फियां बनती है, आनंद की गिनियां तिजोरी, सुख शांति और आनंद रूपी गिनियां हृदय तिजोरी में भर देते हैं ये संत अपने सत्संग से दर्शन से। आनंद की गिनियां तिजोरी इतना का मन की ना बिचारा तब कबीर उन और निहारा। कबीर जी ने उनके तरफ देखा, आओ धर्मदास पग धरो, आए हो बहुत दिनों के बाद, 6 महीने हो गए। कहुंक चहुंक तुम काहे निहारो, कहुंक चहुंक टुकुर टुकुर क्या मेरे को देख रहे हो, आओ बैठो। तब कबीर उन और निहारा, आओ धर्मदास पग धरो, कहुंक चहुंक टुकुर टुकुर तुम काहे निहारो, धर्मदास हम तुमको चीना, धर्मदास हमने तुमको जान लिया, तुम सतपात्र हो सत शिष्य हो, इसीलिए वृंदावन में तुमको कहा था कि एक बार दर्शन होने के बाद फिर दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुमको पात्र मानकर असली बात कह दिया। बहुत दिन में तुम दर्शन दीना, फिर भी तुम बहुत दिन के बाद आए हो, थोड़ा सा धर्मदास कवर कृपा दृष्टि डाली, सत्संग सुनाया। धर्मदास ने कहा कि तो महाटंक साल मिल गया, अब अपनी संपत्ति बांटने को जाऊंगा तो टाइम लगेगा, और उधर जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, बांट के वापस लौटूंगा तो कब लौटूंगा। चिट्ठी लिख दी कि मेरे जो दुकान है मकान है और किराए पे मकान है और खेत खलिए सारी संपदा यथा योग्य तुम बांट दो, मैं बांटने के लिए आऊं, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि संत ब्रह्मज्ञानी संत मिल गए हैं, हृदय में आत्म तीर्थ का साक्षात्कार करूंगा, इस संपत्ति को संभालने या बांटने का मेरे पास समय नहीं है। तो कबीर जी ने देखा कि अपना डॉलर तो नहीं था, रुपीस था, वो बांटने के लिए भी नहीं जाना, अब इधर ही रहूंगा, नो रिटर्न टिकट नॉट नीड, बस साक्षात्कार सफिशिएंट, 2 रोटी खाना है वो तो मिलेगा, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, उनको खिलाता तो मेरे को भी खिलाएगा भगवान, काय को टेंशन करना। कबीर के चरणों में धर्मदास लग गए तो लग गए और अपने आत्म परमात्मा के इस परम सुख को पाया, फिर कभी दुख उनके आगे आया ही नहीं। नहीं तो संसारी दुख मिटाते मिटाते खुद मिट जाते, दुख बचा रहता, सुख को पकड़ते पकड़ते परेशान हो जाते, सुख टिकता नहीं दुख मिटता नहीं, क्योंकि संसारी संसार की चीजों से दुख मिटाना चाहते हैं। जैसे किसी को आग लगे और पेट्रोल पंप पे जाए कि भाई जरा फुवारा कर दे तो आग और भड़केगी। भगवान राम के गुरु बोलते हैं किसी को आग लगे और बोले तिनखों से सूखे तिनखे डालो मेरे पर तो और आग लगेगी, उस जमाने में पेट्रोल पंप नहीं रहे होंगे। अभी मैंने बताया थोड़ा बदल के, वशिष्ठ जी घास बोलते थे, मैं पेट्रोल बोलता हूँ, तो किसी को आग लगे और पेट्रोल पंप का फुवारा कराने जाए, ऐसी किसी को दुख और संसार से दुख मिटाना चाहे दुख बढ़ेगा, अभी भले दुख के ऊपर कवर आ जाए लेकिन कवर भी जलेगा फिर। तो दुख मिटाने का एक ही उपाय है, हाड़ मास के शरीर को मैं मत मानो, चंचल मन को सच्चा मत मानो, बदलने वाली बुद्धि को सच्चा मत मानो, तुच्छ अहंकार को मैं मत मानो। ये अहंकार भी बदलता, मैं बच्चा था, मैं जवान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये अहम भी बदलता है, लेकिन हूँ जो चैतन्य है वो ज्यों का त्यों रहता है। जो दुख को जानता है वो सुख को जानता है, जो बचपन को जानता है वो जवानी को जानता है। जानता तो है लेकिन न जानने को भी जानता है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ उसका भी ज्ञान जिसमें है वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। ऐसा करते हुए अपने चैतन्य स्वभाव का ज्ञान, चैतन्य स्वभाव में विश्रांति और चैतन्य स्वभाव में स्थिति का भावना करें, तो क्रिया भी शुद्ध, भाव भी शुद्ध और ज्ञान भी शुद्ध। ब्रह्मात्म एकत्व शुद्ध ज्ञान है। जो दुनियादारी की उपलब्धियां करते हैं, मैं डॉक्टर बन गया, मैं वकील बन गया, मैं आईएएस बन गया, मैं डायरेक्टर जनरल बन गया, मैं डीआईजी बन गया, आईजी बन गया, डीजीपी बन गया, ये सारी उपलब्धियां तुच्छ हैं, मिटने वाली हैं, और जिसको हुई वो शरीर भी मिटने वाला है। ये नकली उपलब्धियों में असली आत्मा को छोड़कर जो लोग उलझ जाते हैं उनको बोलते हैं श्री कृष्ण विमूढ़। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोक मुझ आत्मा को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनको सतगुरु का ज्ञान मिला है वही मुझ आत्मा को देखते हैं, जानते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब मेरे सन्मुख हो जाता है जीव तो कोटि अघनाश ही तब ही, करोड़ों पाप वासना और पाप संस्कार नाश हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, एक तो होता है लौकिक तप जो दूसरे भी जाने अपन भी जाने, शरीर को एकादशी किया, यात्रा में गए, यात्रा में दान की चीजें ना लेनी चाहिए, ना खानी चाहिए, ना विलासी जीवन जीना चाहिए, तो लौकिक तप। दूसरा होता है शास्त्रीय तप, पाप मिटाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। तीसरा होता है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान को पाने के लिए। तो जो भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है, सत्संग सुनता है, सत्कर्म करता है, उसके चित्त में भगवताकार वृत्ति उठती है। वो भगवताकार वृत्ति भगवत प्रेम पैदा करती है, भगवत रस पैदा करती है, तो जीवन में से नीरसता चली जाती है। नीरस व्यक्ति विकारों में से सुख लेने के भूल से और दुखी होता है। तो जीवन में मांग है रस की, भगवत रस नहीं मिला तो नीरसता विकारों में फंसाएगी। रस की मांग है जीवन में, और वास्तविक जीवन की मांग है तो वास्तविक जीवन तो वही है, वो आत्मदेव। शरीर वास्तविक जीवन नहीं है, मन बुद्धि की डिग्रियां वास्तविक जीवन नहीं है। ये सब मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता है वह वास्तविक जीवन अपना आत्मा है। और सामर्थ्य की भी मांग है, आप कमजोर रहे, असमर्थ रहे, लाचार रहे, ये आपकी इच्छा नहीं है। तो नित्य योग है उस आत्मदेव से, उसकी स्मृति करके नित्य विश्रांति पाने से आपके जीवन में सामर्थ्य भी आएगा, बौद्धिक सामर्थ्य भी आएगा, मानसिक सामर्थ्य भी आएगा, और स्वास्थ्य का सामर्थ्य भी आएगा। साधारण आदमी स्वास्थ्य के लिए न जाने क्या क्या टॉनिकें और दवाइयां खाते हैं, ज्ञानी स्वास्थ्य के लिए टॉनिक के दवाइयां नहीं खाएंगे, ऋतु के अनुसार खा पी के प्रसन्नता से स्वस्थ हो जाएंगे। सामान्य आदमी पोथे पोथे पढ़ पढ़ के लिख लिख के भाषण करेंगे, ज्ञानी सहज में ही बोलेंगे नित्य नवीन ज्ञान। सामान्य आदमी सुख के लिए फर्नीचर लाएगा, टीवी लाएगा, पिक्चर देखेगा, कैसेटे देखेगा, सुख के लिए न जाने क्या क्या राग लापेगा। ज्ञानी अपने आप में ऐसा सुखी होता है कि उसके वचन, उसका दर्शन, उसका सुमरण हजारों लाखों दुखियों के दुख हर के भगवान के सुख की झलकें दे देता है, ऐसा आत्मज्ञान होता है। ये सच्चा ज्ञान है आत्मज्ञान, सच्चा सुख है आत्म सुख, सच्चा लाभ है आत्म लाभ। तो आप पक्का करो, मैं बोलूंगा सेवक बोलेगा, आप जीभ तालू में रखकर मन में बोलना। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते,
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 आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते,
आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते,
आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते,
आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते।
जिसको पक्का हो गया हाथ ऊपर करो। हाँ, आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं। अब इसको तुम जितना महत्व दोगे उतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा सदा सुखी रहना, तुम्हारे लिए आसान होगा सदा निश्चिंत रहना, और तुम्हारे लिए आसान होगा कि मरने के बाद भगवान नहीं मिले, अब भी यही भगवान की मुलाकात। भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से वाणी चलती है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, और सब मिटने के बाद भी जिसके साथ संबंध नहीं मिटता, वो भगवान तो मेरा आत्मा है। नहीं जाना था और जीने की इच्छा थी तो जीव, और जान लिया और जीने की इच्छा चली गई तो भगवान। ऐसा नहीं आकाश में बैठे हैं भगवान दुनिया बनाते, अरे यहीं बैठकर दुनिया बना रहे, भोजन क्या उसमें से खून यहीं बनाते, बच्चे यहीं बनाते, और खाया हुआ उससे फिर मकान दुकान। ये गौ माता भी भगवान है, घास चारा में से दूध बना देती है। भैंस भी भगवान है, भैंस में भी भगवान दूध बनाते। तो भगवान सर्वव्यापक है, सब में है, लेकिन जो जानता है उसको पूर्ण कृपा होती है, और पूर्ण गुरु का ज्ञान होता है तब पूर्ण भगवान को जानता है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली,
पूर्ण गुरु का ज्ञान,
गुरुवर पूर्ण गुरु
का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आसारा,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति
चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो गृहस्थ गुरु का देश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे न्यारे गुजरत दीसा हव पधार, मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी।
नारायण नारायण। तो जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, उसको जानने वाला कभी नहीं गया। वही नित्य है, वही नित्य जीवन है, वही आत्मा है। उस आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, उसमें विश्रांति पाना ही आत्म सुख है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं, और उस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। तो ऐसे महान लाभ को पाने के लिए जब कबीर जी मिल गए, तो गुरु मिले अगम के वासी, जहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इंद्रियां जहाँ से सत्ता पाती उस अगम में वास करने वाले गुरु मिले, उनके चरण कमल चित दीजे, सदगुरु मिले अविनाशी, शरीर तो विनाशी है लेकिन सत स्वरूप अविनाशी है, अविनाशी को मैं मानने वाले कबीर जी मिल गए हैं, उनकी सीत प्रसादी लीने दूरी जाए चौरासी, उनकी शीतलता देने वाली अनुभव की वाणी प्रसाद में लीजिए, दूरी जाए चौरासी, 84 लाख की योनियों की मुसीबतें दूर हो जाए, अमृत बूंद झरे घट भीतर, साथ संत जनहासी, अगर संतों का साथ है तो अंदर में अमृत रस आनंद शांति माधुर्य बरस रहा है, संतों के संग से अनुभव में आता है। धर्मदास बिनवे कर जोरी, धर्मदास विनंती करके हाथ जोड़कर, सार शब्द मनवासी स्वासंदर गया ओम बहराए तो एक, अथवा सार शब्द स्वासंदर गया तो सो बहराए तो हम, वो मैं चैतन्य हूँ, वह मैं साक्षी हूँ, वह मैं आनंद हूँ, जो मन को बुद्धि को शरीर को बदलते हुए जानता है। धर्मदास जी का जन्म हुआ था 1423 में और देह रहा लगभग 1540 तक। इतना लंबा जीवन जिए और लंबे जीवन का सदुपयोग गुरु के से साक्षात्कार करके दूसरों को गुरु तत्व के तरफ ले जाने में लगे रहे।